घर लौटने के बाद इशिका राधिका से बात करना चाहती थी, लेकिन वो अकेले समय बिताने का बोलकर अपने कमरे में चली गई थी। अभिमन्यु ने इशिका से वादा किया कि वो राधिका से बात करेगा। इशिका को कमरे में भेजने के बाद अभिमन्यु राधिका के पास पहुंचा। राधिका परेशानी में इधर उधर चहलकदमी कर रही थी। अभिमन्यु ने अपने हाथ में दो कॉफी के मग लिए हुए थे। उसने एक राधिका की ओर बढ़ाते हुए कहा, अब समझ आ रहा है इशिका किसकी तरह है, वो भी कुछ ज्यादा ही सोचती है। राधिका ने कॉफी ली और मुस्कुराकर कहा, इस वक्त सच में मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। मेरा सर दर्द से फट रहा है। मैं इशिका को कुछ भी बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन बहुत लाचारी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जो हो रहा है वो मेरे बस में क्यों नहीं है। जो भी होता है वो हमारे बस में कहाँ होता है मिसेस सिंघानिया, अभिमन्यु ने जवाब दिया। फिर वो कुछ पल रुककर बोला, चलिए खुली हवा में चलकर बात करते हैं। राधिका ने उसकी बात मान ली और अभिमन्यु के साथ बाहर गार्डन एरिया में आ गई। वे दोनों टहलते हुए बातें कर रहे थे। अभिमन्यु ने राधिका की ही बात का जवाब देते हुए कहा, जब हमारा बस ही नहीं चल रहा है तो खुद को स्ट्रेस देकर क्या फ़ायदा है। कई बार कुछ चीज़ें वक्त पर छोड़ देनी चाहिए। क्या मैंने गलत किया जो अब तक इशिका के बारे में केशव को नहीं बताया? उसे तो ये तक पता नहीं है कि मैंने ट्विंस को जन्म दिया था और उनमें से एक बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा है, राधिका ने मायूसी से कहा। आज तक उसने इस बारे में किसी से नहीं पूछा था कि उसने सही किया है या गलत, पर आज पहली बार उसने अभिमन्यु से ये सवाल किया। आपने उस वक्त पर सब कुछ सोच समझकर डिसीजन लिया था और मर्चेंट फैमिली से मिलने के बाद यही कहूंगा कि आपका डिसीजन बिल्कुल सही था। बस आपने आदर्श सिंघानिया पर भरोसा करके सबसे बड़ी गलती की। वो आपकी कंपनी की एक ब्रांच को संभाल रहा था, एक मामूली सा मैनेजर, फिर आप उस पर इतना भरोसा कैसे कर सकती हैं कि उसके साथ आ गई, अभिमन्यु ने हैरानी जताते हुए पूछा। राधिका ने गहरी सांस ली और जवाब में कहा, उसने मुझे प्रपोज किया था, तब मैं केशव से प्यार करती थी और मैंने उसे ईमानदारी से सब कुछ सच बता दिया था और उसने मेरे इस फैसले का सम्मान किया था। उसने ये तक कहा था कि वो हमेशा मेरी रिस्पेक्ट करेगा और उसे जब भी मेरी ज़रूरत होगी वो हमेशा मेरे लिए हाजिर रहेगा। एक दो महीने तक मैंने उसे ऑब्जर्व किया तो वो सच में अच्छा इंसान लगा था मुझे। हाँ, क्योंकि उसे आपको इम्प्रेस करना था, अभिमन्यु ने सिर हिलाकर कहा। उस पर यकीन करने की और भी वजह है। जब मैंने उसे मेरी प्रेगनेंसी के बारे में बताया तब भी उसने यही कहा कि वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है, हमेशा सबसे मुझे बचा कर रखेगा और मेरे बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार करेगा। मैंने उसे पहले ही क्लियर किया था कि मैं उसे कभी एक पत्नी का प्यार नहीं दे पाऊंगी, तब भी उसने शिकायत नहीं की। इतनी वजह काफ़ी होती है किसी आदमी पर विश्वास करने की। राधिका ने अभिमन्यु को सब कुछ बता दिया था। देखा जाए तो आदर्श पूरी दुनिया के सामने एक आइडियल हस्बैंड था जो अपनी वाइफ की बहुत रिस्पेक्ट करता था। ये राधिका की ही मेहनत का नतीजा था कि आदर्श खुद का बिजनेस खड़ा कर पाया था। राधिका ने आगे कहा, पुरानी बातों पर बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। तुमने केशव के साथ थोड़ा वक्त बिताया है तो जानते हो कि वो कितना ज़िद्दी है। मुझे बस डर है कि वो इशिका को मुझसे अलग ना कर दे। इशिका बच्ची नहीं रही है और वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती है। वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी और मुझे पूरा यकीन है कि वो मिस्टर सिंघानिया को भी समझा देगी, अभिमन्यु बोला। राधिका भी उसकी बात से सहमत थी क्योंकि आज इशिका ही थी जिसने केशव के गुस्से को शांत किया था। अभिमन्यु से बात करने के बाद राधिका को काफ़ी हल्का महसूस हो रहा था। थैंक यू सो मच तुमने मुझे टाइम दिया, इशिका ने ज़िद की होगी मेरे पास आने की, राधिका ने पूछा। वो उसका बिहेवियर अच्छे से जानती थी। हाँ, और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है अगर वो आपके साथ टाइम स्पेंड करे। आप दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन वो आजकल कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस लेने लगी है। कोशिश कर रहा हूँ कि उसके दिल में जो भी इनसिक्योरिटी है उसे दूर कर सकूँ, अभिमन्यु ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तुम ये कर लोगे, राधिका ने उसका हाथ सहलाकर कहा। जहां बाहर अभिमन्यु राधिका को बेहतर महसूस कराने की कोशिश कर रहा था तो वहीं रूम के अंदर इशिका के पास पार्थ का मेल आया था। उसने प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी जानकारी भेज दी थी। चलो अच्छा है, कुछ तो काम करने को मिला, वरना अभिमन्यु के कहने के बाद दिशांक तो एक छोटा सा काम तक नहीं बताता, इशिका ने मुस्कुराकर कहा और डिटेल्स देखने लगी थी। उसे पार्थ का प्रोजेक्ट काफी अच्छा लगा था। अगर उसमें कुछ कमियां नहीं होती तो वो एक बेस्ट प्रोजेक्ट निकल कर आता। उसके मेल में जरूरी डिटेल्स पढ़ने के बाद इशिका ने कहा, इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए मुझे लैब में जाना होगा, आई होप कि अभिमन्यु मान जाए। इशिका ने अपने मोबाइल को साइड रखा और फिर बाहर जाने लगी कि तभी नक्श उसके कमरे में आ गया था। अचानक उसे वहां देखकर इशिका के चेहरे के भाव सख्त हो गए थे। इशिका नक्श को इग्नोर करते हुए बाहर जाने लगी, लेकिन नक्श ने इशिका का हाथ पकड़कर उसे रोका और खींचते हुए दीवार से लगा दिया था। नक्श इशिका की आंखों में देखते हुए गुस्से भरी आवाज में बोला, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो इशिका, तुम चाचू के बच्चे की माँ बनने वाली हो, वो चाचू है मेरे और हमारे बीच कभी एक रिश्ता रहा था, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई उनके साथ किसी तरह का रिलेशन बनाते हुए, तुम इतना गिरा गई, ये तक ख्याल नहीं आया अगर हमारे बीच कोई रिश्ता होता तो वो तुम्हारे भी चाचू होते। एक्सक्यूज मी, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारा अभिमन्यु के साथ जो भी रिश्ता है वो तुम जानो, लेकिन वो मेरा हस्बैंड है और हमारे बीच में बोलने वाले तुम कौन होते हो? इशिका ने गुस्से में जवाब दिया। अच्छा, मैं कौन होता हूँ? मैं वही लड़का हूँ जो तुम्हें पसंद करता था। मुझे पता चला था कि अगर मैं तुम्हें प्रपोज करता तो तुम मुझे हाँ कहने वाली थी। फिर अचानक तुम्हें पता चला होगा कि राजवंश एम्पायर तो अभिमन्यु राजवंश के पास है, तो उनके साथ चली जाती हूँ। नक्श अपने गुस्से में इशिका को कुछ भी बोल रहा था। इशिका ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ मैं तुम्हें हाँ कहती अगर तुम मेरा सोशल स्टेटस इग्नोर करके मेरे साथ आते, लेकिन नहीं, तुम्हें तो जायज बेटी चाहिए थी ना, और आयशा जैसी लड़की ही डिजर्व करते हो तुम। याद है ना मेरी आइडेंटिटी क्या है? बस एक बार मेरी कंपनी सबके सामने आ जाए तो सबको पता चल जाएगा कि मैं ही डॉक्टर मर्चेंट हूँ। मुझ में इतनी काबिलियत है कि मैं पैसे कमा सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। उल्टा तुम्हारा राजवंश एम्पायर मुझे हायर करना चाहता है, वो भी ना जाने कब से। अच्छा ठीक है, जो भी गलती हो गई उसके लिए मुझे माफ कर दो। अब तो आयशा चली गई है ना, मैं सब भूलने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरे पास आ जाओ, आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे बच्चे को अपना बच्चा समझ कर पालूंगा। नक्श अभी भी इशिका को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। अचानक इशिका के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट उभर आई थी। उसने नक्श से कहा, सालों पहले ऐसा ही एक वादा एक इंसान ने मेरी माँ के साथ किया था और उसने मेरी जिंदगी नरक बना दी थी। मेरे बच्चे का बाप इस दुनिया में है और वो हमेशा साथ रहेगा, तो मुझे किसी सपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं है। और अगर वो ना रहे तो? नक्श अपनी बात पूरी करता उससे पहले इशिका ने गुस्से में उसके गाल पर कस के तमाचा लगाया। उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगी। इशिका ने नक्श को वार्निंग फिंगर दिखाते हुए कहा और फिर उसे धकेलकर बाहर जाने लगी। इशिका इस वक्त गुस्से में तेज सांस ले रही थी। वो बाहर आई तब अभिमन्यु राधिका के साथ अंदर आ रहा था। उसे इस तरह गुस्से में तमतमाते देखकर अभिमन्यु ने पूछा, तुम ठीक नहीं लग रही हो, कुछ हुआ है क्या?
अभिमन्यु प्लीज, मुझे इस घर में नहीं रहना है। यहाँ के लोग कितने घटिया हैं। वो हमारे रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं, मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तुम्हारे साथ गलत करना चाहते हैं। डैड बिल्कुल ठीक कह रहे थे, हम दोनों को यहाँ नहीं रहना चाहिए, इशिका ने हाँफते हुए कहा। उसकी बात सुनकर राधिका और अभिमन्यु दोनों ही हैरान रह गए। जो इशिका थोड़ी देर पहले केशव को समझा रही थी कि अभिमन्यु उसे हर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता है, वो कुछ देर बाद केशव की ही भाषा बोल रही थी। अभिमन्यु ने राधिका की तरफ देखकर उसे शांत रहने को कहा। उसने इशिका का हाथ पकड़ा और कहा, मेरे साथ अंदर चलो और बताओ क्या हुआ है, उसके बाद डिसीजन लेंगे कि कहाँ रहना है। इशिका ने उसकी बात पर हामी भरी और अभिमन्यु के साथ अंदर आने लगी। जब अभिमन्यु और इशिका अंदर की तरफ बढ़ रहे थे तो सामने नक्श आया। अभिमन्यु ने उसके गाल पर उंगलियों के निशान देखे तो उसे समझने में देर नहीं लगी कि इशिका आखिर ऐसा क्यों कह रही है। अचानक अभिमन्यु के चेहरे के भाव सख्त हो गए थे। उसने इशिका का हाथ छोड़ा और नक्श के मुंह पर एक जोरदार पंच मारा। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही। देखते हैं अभिमन्यु इस मैटर में क्या करता है। अगले चैप्टर पर मिलते हैं, पढ़कर कमेंट कर दीजिएगा।